इशिका पार्थ के साथ हॉस्पिटल आई हुई थी। पिछले काफी दिनों से पार्थ इशिका के आसपास ही था और साथ रहते हुए उसके दिल में न जाने कब इशिका के लिए थोड़ी बहुत ही सही पर फीलिंग्स ग्रो होने लगी थीं। ये पार्थ के मकसद के लिए सही नहीं था। जब उसे एहसास हुआ कि वो इशिका को एक अलग ही नज़र से देखने लगा है तो पार्थ तुरंत इशिका से दूर चला गया था। वहीं इशिका डॉक्टर के केबिन में बैठकर उसके आने का इंतजार कर रही थी। लगभग 5 मिनट बाद डॉक्टर सेन वहां पहुंच चुकी थी। डॉक्टर सेन ने अंदर आते हुए मुस्कुराकर कहा, आई एम रियली सॉरी मिसेज राजवंश, आपको इंतजार करना पड़ा, अचानक एक इमरजेंसी आ गई थी। इशिका खड़ी हुई और उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, इट्स ऑल राइट डॉक्टर सेन, इमरजेंसी को पहले ट्रीट करना ज्यादा जरूरी होता है। मैं तो वैसे भी नॉर्मल चेकअप के लिए आई थी, जूनियर डॉक्टर भी मेरा चेकअप कर सकती थी। हाँ, लेकिन मिस्टर राजवंश ने कॉल करके खास कहा था कि मैं आपके हर एक टेस्ट को अच्छे से अपनी आंखों के सामने करवाऊं, डॉक्टर सेन ने जवाब दिया। चलिए आप मेरे साथ आइए, पहले हम अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं। इशिका डॉक्टर के पीछे पीछे अल्ट्रासाउंड रूम के अंदर आई। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा वो हैरान रह गई। अभिमन्यु पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे डॉक्टर सेन इमरजेंसी का बहाना बनाकर वहां अभिमन्यु से ही बात कर रही थी। अचानक अभिमन्यु को वहां देखकर इशिका को बहुत खुशी हुई। वो कहना चाहती थी कि आज चेकअप के दौरान अभिमन्यु उसके साथ मौजूद रहे, लेकिन एंड मोमेंट पर जरूरी काम आने की वजह से अभिमन्यु को जाना पड़ा। इशिका चाहकर भी कोई शिकायत नहीं कर सकती थी। इशिका जल्दी से अभिमन्यु के पास आई और उसके गले लगते हुए बोली, लेकिन तुम्हें तो राजवंश एम्पायर जाना था ना, पृथ्वी ने कहा था कोई प्रॉब्लम आ गई है, फिर तुम यहां क्या कर रहे हो? जो भी प्रॉब्लम थी वो मैं गाड़ी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अटेंड करके सॉल्व कर दी थी। तुम्हें इस तरह अकेले यहां भेजना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, अभिमन्यु ने उसे सहलाते हुए जवाब दिया। इशिका के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर उसे अच्छा लग रहा था। अभिमन्यु इशिका से अलग हुआ और फिर प्यार से उसके गाल पर हाथ रखकर उसे सहलाते हुए कहा, तुम भले ही कोई शिकायत ना करो लेकिन तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा सब बता देता है। मैं कितना भी बिजी क्यों ना हो जाऊं पर ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम्हें मेरी जरूरत होगी और मैं वहां मौजूद ना रहूं। अपनी बात खत्म करके अभिमन्यु ने इशिका के गाल पर हल्का सा किस किया। अभिमन्यु ने डॉक्टर को इशारा करके आगे की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए कहा। इशिका ने लूज क्रॉप टी शर्ट पहनी हुई थी, इसीलिए उसे चेंज करने के लिए नहीं जाना पड़ा, उसने अपना टी शर्ट ऊपर कर लिया था और डॉक्टर ने उसके ट्राउजर पैंट्स को थोड़ा नीचे खिसका दिया था। इशिका ने अभिमन्यु की तरफ देखा, अभिमन्यु ने आंखों ही आंखों में उसे सब ठीक होने का इशारा किया। डॉक्टर ने इशिका के पेट पर एक जेल लगाया और फिर मशीन के जरिए बच्चों के मूवमेंट को मॉनिटर करने लगी। अचानक डॉक्टर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने अभिमन्यु की तरफ देखकर सर हिलाकर कहा, लगता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है मिस्टर राजवंश। क्या मतलब डॉक्टर, इशिका ठीक है ना, और बेबी वो तो नॉर्मल है ना, अभिमन्यु ने जल्दी से घबरा कर पूछा। उसे लगा कि इशिका की कंडीशन खराब होने की वजह से डॉक्टर ऐसा कह रही हैं। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव देखकर डॉक्टर बोली, अरे नहीं, घबराने जैसा कुछ नहीं है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसीलिए बढ़ने वाली है क्योंकि आप एक नहीं दो बच्चों के बाप बनने वाले हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी वाइफ ट्विंस एक्सपेक्ट कर रही है। जैसे ही अभिमन्यु ने सुना उसकी आंखें नम होने लगी और चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने एक नज़र इशिका की तरफ देखा जिसे अभी भी ये खबर सुनकर यकीन नहीं हो रहा था। अभिमन्यु ने से इशिका के पास आकर उसका हाथ पकड़ा। उसने इशिका की आंखों में देखते हुए कहा, अब तो तुम्हें काम करने की इजाजत बिल्कुल नहीं मिलने वाली है, बाकी इस बारे में हम अकेले में घर पर बात करेंगे। अभिमन्यु की आंखों में काफी सारे जज्बात थे और इशिका से बहुत कुछ कहना चाहता था। डॉक्टर के सामने वो खुलकर कुछ नहीं कह पा रहा था। इशिका ने मुस्कुराते हुए हां में सिर हिलाया। फिर उसने डॉक्टर की तरफ देखकर पूछा, डॉक्टर मेरे बेबीज हेल्दी तो है ना, आई मीन मेरा वेट थोड़ा कम है और मैं काम के चलते ज्यादा ध्यान भी नहीं रख पा रही हूँ। हाँ, इसी बारे में मुझे आपसे बात करनी थी मिसेज राजवंश, बच्चे थोड़े वीक हैं लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, आपको अपना खास ध्यान रखना होगा ताकि दोनों बच्चे अच्छा ग्रो कर सकें, डॉक्टर ने इशिका को समझाते हुए कहा। उसकी चिंता आप मत कीजिए डॉक्टर, मैं पूरा ध्यान रखूंगा, अब से आपकी पेशेंट की जिम्मेदारी मेरी, अभिमन्यु बोला। उसकी बातों से इशिका समझ गई थी कि अब उस पर अच्छे खासे रिस्ट्रिक्शंस लगने वाले थे। पहले भी अभिमन्यु उसके काम करने के पक्ष में नहीं था, अब तो ऊपर से डॉक्टर ने भी कह दिया था। इशिका भी कोई चांस नहीं लेना चाहती थी क्योंकि ट्विंस होने वाले थे। डॉक्टर से सारे प्रिकॉशन और प्रिस्क्रिप्शन लेने के बाद अभिमन्यु और इशिका गाड़ी के अंदर थे। अभिमन्यु इतनी देर तक मुश्किल से अपने को कंट्रोल में किए हुए था, अब तो वो इशिका के साथ अकेला था। अब उसे अपने जज्बातों को दबाने की कोई जरूरत नहीं थी। गाड़ी के अंदर बैठते ही अभिमन्यु ने इशिका को अपने पास आने का इशारा किया। उसने गाड़ी का पार्टीशन लगा लिया था। इशिका जैसे ही उसके पास खिसककर करीब बैठने को हुई, अभिमन्यु ने उसे पकड़कर अपनी गोद में बिठा लिया था। उन दोनों का चेहरा एक दूसरे की तरफ था। इशिका ने अभिमन्यु की आंखों में देखते हुए कहा, कैसा लग रहा है मिस्टर राजवंश एक साथ दो बच्चों का डैड बनकर? पहले तो मैं खुद को एक बच्चे का डैड बनने के लिए तैयार कर रहा था, लेकिन तुमने तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और खुशियाँ दोनों ही दुगनी कर दी हैं। मैं अपने इमोशंस बयां तक नहीं पा रहा हूँ, बस यही कहूँगा थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आकर इस जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए। बचपन से अब तक तुमने जाने अनजाने में मेरा साथ दिया है और इशिका सच में तुम मेरे जीने की वजह हो, अभिमन्यु ने इशिका की आंखों में देखते हुए इंटेंस वॉइस में कहा। उसने इशिका को अपने सीने से लगा लिया था। वहीं इशिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसने अभिमन्यु के कान के पास आकर बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, अच्छा पहले ट्राइमेस्टर तक तुम्हें काम कर ही सकती हूँ ना? सोचना भी मत मिसेज राजवंश, अभिमन्यु ने प्यार से लेकिन थोड़ी सख्त आवाज में कहा। बस रेस्ट करना है, मेरे पास रहना है, खुद को स्ट्रेस से दूर रखना है और वो सब करना है जिससे तुम्हें खुशियां मिले। लेकिन मुझे तो काम करके खुशियां मिलती है मिस्टर राजवंश, इशिका ने उसे परेशान करने के लिए कहा। अभिमन्यु ने कुछ पल सोचा और फिर शरारती मुस्कुराहट के साथ बोला, ठीक है मिसेज राजवंश, फिर मैं कोई ना कोई तरीका निकाल ही लूंगा जिससे तुम एक मिनट के लिए फ्री ना रहो। अभिमन्यु और इशिका ट्विंस के बारे में बात करते हुए बहुत खुश थे। उन दोनों के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट थी। जब उनकी बातें खत्म हो गई तब वो बिना कुछ बोले एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। उन दोनों के होंठ धीरे धीरे एक दूसरे के करीब बढ़ रहे थे। इशिका के बिल्कुल करीब आते ही अभिमन्यु ने उसके होंठों को कैप्चर किया और बहुत ही प्यार से सॉफ्टली किस कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ केशव ने अपने मकसद के हिसाब से मालविका को तैयार कर दिया था। उसे लगातार 3 दिनों तक इतने बिजली के झटके दिए गए कि वो अपना मानसिक संतुलन काफी हद तक खो चुकी थी। मालविका की एक किडनी तक निकाल दी गई थी, अब वो व्हील चेयर के ऊपर थी। केशव मालविका के सामने बैठा हुआ था। मालविका बेसुध होकर व्हील चेयर पर अपना सर दाएं कंधे की तरफ लटका कर बैठी थी। उसका चेहरा पहचान लायक नहीं रहा था। खूबसूरत दिखने की चाहत में वो अपने चेहरे पर अच्छा खासा मेकअप करके रखती थी। अब तो उसका चेहरा मुरझाया हुआ था और चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। आंखों के नीचे गहरे गड्ढे हो गए थे और बाल बुरी तरह उलझे हुए थे।
केशव तिरछी मुस्कुराहट के साथ उसे देख रहा था। मालविका की खराब हालत देखकर केशव ने सर्द आवाज में कहा, तो राधिका की खराब हालत की जिम्मेदार भी तुम ही हो। मेरी बेटी ईशानी के साथ जो भी हुआ उसका जिम्मेदार आदर्श था, लेकिन इशिका को बदलने के बाद उसके ऊपर टॉर्चर करने वाली तुम थी। आदर्श समझदार निकला जो उसने खुद ही अपनी जान दे दी, वरना उसका तुमसे भी बुरा हश्र करता मैं। केशव मालविका से बात कर रहा था जबकि अरमान उसके पास खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। अरमान ने गहरी सांस ली और केशव से बोला, आगे क्या करने का इरादा है? इसकी हालत बहुत खराब लग रही है, इससे अच्छे हाल में तो रोड पर भीख मांगने वाले भिखारी होते हैं। ठीक है, तो फिर इसे इसकी औकात के हिसाब से ही सजा दे देते हैं, केशव ने सस्पिशियस तरीके से कहा। उसके कहने का मतलब अरमान को समझ नहीं आ रहा था। केशव ने वार्ड बॉय को उसकी व्हीलचेयर अपने पीछे लाने का इशारा किया। थोड़ी ही देर में केशव और अरमान गाड़ी के अंदर थे, मालविका भी उनके साथ थी। कुछ ही देर में वो मुंबई से एक बड़े से भिखारी गिरोह के पास पहुंच चुके थे। केशव ने मालविका को सजा देने का यही रास्ता निकाला था। उन्होंने बहुत मुश्किल से इस गैंग से कॉन्टैक्ट किया था। हालांकि वो इल्लीगल काम करते थे, पर मालविका पर नज़र रखने के लिए केशव को उन जैसे लोगों की ही ज़रूरत थी। मालविका को उनके मुखिया को सौंपते हुए केशव ने कहा, इसकी हर एक मूवमेंट पर नज़र रखनी है तुम्हें, पैसे तुम्हें मैं देता रहूंगा, पर इसकी हालत मुझे और ख़राब चाहिए। चिंता मत करो साहब, ये हम पर है, उनका मुखिया मुस्कुराते हुए बोला। मालविका को अब तक थोड़ा बहुत होश आ चुका था। जब उसने नज़र घुमाकर इधर उधर देखा तो वो काफ़ी डर गई थी। उसने केशव की तरफ प्लीडिंग आईज से देखकर कहा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ, मुझसे गलती हो गई। तुम कहोगे तो मैं राधिका और इशिका के पैरों में पड़कर माफ़ी मांग लूंगी। जेल में अपनी सज़ा काटने के लिए तैयार हूँ, पर यहाँ मत छोड़ो। यही तुम्हारी असली जगह है मालविका। एक बार तुमने बचपन में मेरी बेटी को गलत लोगों को भेजा था। शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हारी तरह गिरा हुआ नहीं हूँ। कम से कम ये लोग तुम्हारे साथ कोई गलत हरकत नहीं करेंगे। तुमने मेरी बेटी को हर चीज़ के लिए तरसाया है, तो अब बारी तुम्हारी है। भीख मांगो और गुजारा करो, केशव ने नफ़रत भरे अंदाज में कहा। मालविका पीछे से चिल्लाती रह गई और केशव उसे वहीं पर छोड़कर अरमान के साथ निकल गया था। शायद यही मालविका की नियति थी। उसने जो इशिका के साथ किया वही लौटकर उसके पास वापस आया था। दूसरी तरफ इशिका और अभिमन्यु पूरा दिन साथ बिताने के बाद शाम के वक्त घर पर पहुंचे थे। अभिमन्यु ने उन सबको बात करने के लिए लिविंग एरिया में बुलाया था। पार्थ भी वहीं पर था, तो वो भी लिविंग एरिया में पहुंचा था। आते ही उसने एक नज़र इशिका की तरफ देखा और फिर अपनी नज़र तुरंत ही घुमा ली थी। अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए इशिका का हाथ पकड़ा और उन सब की तरफ देखकर कहा, मेरे पास आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। कंपनी पब्लिक करने के अलावा दूसरी गुड न्यूज़ है। एक्चुअली इशिका ट्विन्स एक्सपेक्ट कर रही है। क्या सच में? वसुधा अविश्वास से जल्दी से बोली और फिर इशिका के पास जाकर उसे जल्दी से गले से लगा लिया था। वो इशिका को आशीर्वाद देते हुए बोली, ईश्वर तुम्हें ज़िंदगी की हर खुशी दे। अब तो मुझे मौत भी आ जाए तो उसका अफसोस नहीं होगा। अभिमन्यु तुरंत वसुधा की बात पर उन पर नाराज़गी जताते हुए बोला, दादी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अभी तो आपको बहुत कुछ देखना है अपनी ज़िंदगी में। क्या पता कल को मेरे दोनों बच्चे की आपस में शेयर्स को लेकर लड़ने लगे तो? अभिमन्यु उन्हें परेशान कर रहा था। तभी वसुधा ने कहा, तो तू क्या चाहता है कि तेरे दोनों बच्चों के बड़े होने तक मैं जिंदा रहूंगी? तब मेरे पास लड़ने की भी इतनी हिम्मत नहीं रहेगी। खुद ही संभालना अपने बच्चों को।
वसुधा के बाद राधिका इशिका के पास आई और उसे हग किया। वो उसे प्यार से सहला रही थी। पार्थ ने भी मजबूरी में ही सही, लेकिन इशिका और अभिमन्यु को कॉन्ग्रेचुलेट किया। वो सब आपस में बातें करने में लगे हुए थे, तभी राधिका के पास केशव का मैसेज आया। इसे देखने के बाद राधिका के चेहरे का रंग उड़ गया था। आप पता नहीं कैसे राधिका पर कौन सा नया बम फोड़ने वाला है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। अगले चैप्टर के मिलते हैं, पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा।